जनादेश 2019।
वेलकम टू जनादेश 2019। इन दिस प्रोग्राम वी विल ब्रिंग यू वेरियस न्यूज एंड डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू जनरल इलेक्शंस। आई एम रीमा पाराशर। कार्यक्रम जनादेश 2019 में आज हम चुनाव के बाद के विश्लेषण और उससे जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। इन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र शुक्ला। तो हम इस चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आपको बता दें कि 17वीं लोकसभा के चुनाव के लिए मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। कल 7वें और अंतिम चरण में करीब 65% मतदान दर्ज किया गया। इसी के साथ लोकसभा की 542 सीटों के लिए 8,049 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य भी सीलबंद हो गया है। लोग जबरदस्त वाक युद्ध वाले इस चुनाव के परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा और चार राज्यों ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनावों के मतों की गिनती बृहस्पतिवार को सुबह शुरू होगी। 17वीं लोकसभा के चुनाव के लिए मतदान सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों की राजधानी दिल्ली में गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के नेताओं ने स्पष्ट बहुमत मिलने का विश्वास व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह बृहस्पतिवार को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले नई दिल्ली में एनडीए के नेताओं से मिलेंगे और चुनाव बाद के परिणामों की स्थिति पर चर्चा करेंगे। भाजपा अध्यक्ष ने उनके लिए रात्रि भोज का आयोजन भी किया है। यह बैठक एनडीए के नेतृत्व में भाजपा के केंद्र में दोबारा आने के चुनाव परिणाम पूर्व सर्वेक्षण के मद्देनजर की जा रही है। दूसरी तरफ विपक्षी नेता खंडित जनादेश की स्थिति में केंद्र में सरकार बनाने के लिए गैर एनडीए और एनडीए से अलग हुए दलों को एकजुट करने की तैयारी कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एंड टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू हैज बीन होल्डिंग टॉक्स विद टॉप ऑपोजिशन लीडर्स इंक्लूडिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी एंड एनसीपी चीफ शरद पवार इन न्यू दिल्ली। मिस्टर नायडू हैज बीन मीटिंग विद वेरियस लीडर्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज टू अलाय सपोर्ट फॉर अ न्यू नॉन बीजेपी गवर्नमेंट एंड अ सेंटर। ऑन सैटरडे मिस्टर नायडू हैड मेट मिस्टर गांधी एंड मिस्टर पवार बिफोर फ्लाइंग टू लखनऊ टू होल्ड टॉक्स विद समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव एंड बीएसपी प्रेसिडेंट मायावती। ही ऑल्सो मेट लोकतांत्रिक जनता दल लीडर शरद यादव एंड लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। द टीडीपी चीफ हैड अर्लियर हेल्ड सेवरल राउंड्स ऑफ डिस्कशंस टीएमसी चीफ ममता बैनर्जी, आप नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल एंड सीपीआईएम जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी। वी ब्रिंग यू अ रिपोर्ट।
BJP did not have pre-poll alliances apart from the regular NDA constituents. Congress also deserted from having alliance at the national level. The party tried to have some state-level ties up with smaller parties other than the member of the United Progressive Alliance. An alliance was formed in Uttar Pradesh, jointly led by former Chief Minister Akhilesh Yadav of Samajwadi Party, Mayawati of Bahujan Samaj Party, and consisting Ajit Singh's Rashtriya Lok Dal, along with several other constituents, including the leftist parties as well. While almost all the exit polls by different agencies have predicted returns of the NDA in power with a clear majority, there is a divergence with regard to the outcome in Uttar Pradesh and West Bengal, which together account for 122 seats. It remains to be seen how things take shape in case of fractured mandate. The postponed reorganization of forces and the regional parties would play the key role in formation of the new government at the center in such a situation. Sanjeev Jasrotia, Dex Report.
So, Devendra ji, hum charcha ki shuruaat karte hain is baat se ki agar hum exit polls ke natijon ki baat kare to usse pehle hi EVM ko lekar charcha shuru ho gayi hai. Chandrababu Naidu dharne ki baat kar rahe hain, EVM किस तरह से चीजें चली उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको आप किस तरह देख रहे हैं?
देखिए रीमा, 2014 के बाद से ये सारी बहस जो है वो तब बहुत ज्यादा गहरी हो गई है जब स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन के चुनाव होते थे। और आपने चुनाव दर चुनाव अगर देखा होगा कि 5 साल के भीतर जो है वो सभी स्टेट में आमतौर से चुनाव जो है वो रिवाइज हो जाते हैं, कि मतलब 31 स्टेट अगर हैं तो 31 स्टेट्स के भीतर जो चुनाव है वो हो जाते हैं 5 साल की सीमा में। भाजपा ने आमतौर से सभी स्टेट्स में खुद के दम पे या अपने एलाइज के दम पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और बार बार ऐसा हुआ है कि जब जब भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर वो कर्नाटका में भी जहां वो मेजोरिटी नहीं ले पाए थे, लेकिन जब जब इस तरीके से भाजपा के अच्छे प्रदर्शन की बात हुई है तो विपक्षी दलों द्वारा बार बार इस इश्यू को उठाया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे चुनाव हुए हैं इस पांच साल की अवधि में ही जिसमें भाजपा को हार मिली है। जैसे कि आप बिहार में अलायंसेस के थ्रू जो एक असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें भाजपा को हार मिली थी, दिल्ली में भाजपा को हार मिली थी, इसके बाद अभी रिसेंटली नवंबर में जो इलेक्शन हुए थे उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका छत्तीसगढ़, तीनों ही राज्यों में भाजपा को कांग्रेस के हाथों ही हार मिली थी। तो अब ये जो चुनाव हुआ है इसमें अभी जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें अगर देखा जाए तो मोटे तौर पे जो एनडीए है उसको अन्य, चाहे अन्य की अपेक्षा में और कांग्रेस ने जो यूपीए है उसकी तुलना में काफी बढ़त दिखाई जा रही है। तो इस दौरान अब नए नए तरीके की तमाम जो बातें हैं वो सामने आ रही, तो ईवीएम के ऊपर जो ये दोष मढ़ने की बात है वो भी उस चर्चा का ही एक भाग है, लेकिन इसमें बहुत दम नहीं है।
तो देवेंद्र जी, ईवीएम पर तो हम बात कर ही रहे हैं, ममता बनर्जी ने तो सबसे पहला रिएक्शन ये दिया कि वो इसे गॉसिप मान रही हैं, एग्जिट पोल के जो नतीजे आते हैं कितने विश्वसनीय होते हैं अगर हम बात करें।
देखिए, ममता बनर्जी की जहां तक ये एग्जिट पोल को गॉसिप कहने की बात है, ममता बनर्जी ही नहीं, जिन जिन राज्यों में जो भी सरकारें हैं, स्टेट में जो अलायंसेस की जो सरकारें हैं, उन सभी ने एग्जिट पोल के नतीजों को नकारने की बात कही है। और ये होता है, ये एक परंपरा सी बन गई है इस देश में कि जब भी नतीजे आपके माकूल होते हैं तो आप उनको स्वीकार करते हैं और जब वो आपके माकूल नहीं होते हैं तो आप उनको नकार देते हैं। ये बात चाहे दिल्ली के लिए हो जिसमें कि भाजपा को एग्जिट पोल्स में बढ़त दिखाई दी थी लेकिन वैसा हुआ नहीं था, तब अरविंद केजरीवाल ने इसी चीज को नकारा था। ये चीज जब अभी आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जब इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस ने भी कुछ जगह एग्जिट पोल को सही माना था और कुछ जगह एग्जिट पोल को गलत माना था। तो अपनी सुविधा के अनुसार ये चीज की जाती है। जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है तो पश्चिम बंगाल में ये कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वो इस बार तृणमूल कांग्रेस को बहुत कड़ी टक्कर देने जा रही है और कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से तय होता जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को वोटों और सीटों दोनों ही लिहाज से नुकसान होगा, इसलिए वो इस तरीके की बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं डालने की कोशिश कर रही हैं।
एग्जिट पोल की अगर हम विश्वसनीयता की क्योंकि बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरह से एग्जिट पोल होते हैं, किस तरीके से वो जो सैंपल लिए जाते हैं, क्योंकि इस बार ये भी चर्चा रही कि अलग अलग एग्जिट पोल के नतीजे आए और सबने ये दिखाया कि हमारे सबसे विश्वसनीय है क्योंकि हमने उसका सैंपल सर्वे बहुत ज्यादा किया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं।
देखिए, एग्जिट पोल में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि आप एग्जिट पोल में करते क्या हैं। एग्जिट पोल में आप बेसिकली वोट शेयर है उसको काउंट करते हैं। सीटों की गणना जो है वो इस आधार पर की जाती है कि स्विंग फैक्टर किस तरीके का है, कि पहली बार की तुलना में किसी दल विशेष को जो है वो वोट शेयर के हिसाब से बढ़त मिल रही है या उसका जो वोट शेयर है वो नीचे जा रहा है। हर दल के लिए ये तय सा नहीं होता है कि आप अगर एक निश्चित वोटर परसेंटेज को प्राप्त करेंगे तो आपकी सीटें इतनी ही आएंगी। जैसे कि मैं आपको यूपी का एग्जाम्पल देना चाहूं कि अगर आज के दिन में भाजपा को 2014 का वोट शेयर उत्तर प्रदेश में मिले तो भी वो 71 सीटें प्राप्त करने का दावा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इस बार जो नए तरीके का वहां गठबंधन एसपी और बीएसपी का आया है तो वो भाजपा के लिए एक मजबूत चुनौती है। अब दोनों ही दलों का जो वोट है वो आपस में जुड़ गया है, आप इसको अर्थमेटिकली काउंट करके मत देखिए। वो इसलिए है क्योंकि आप अलग अलग सीटों पे जहां पे थर्ड कॉर्नर फाइट है, जैसे कांग्रेस कहीं फाइट कर रही है तो वहां पे वोट शेयर के हिसाब से ही सीटें तय नहीं होंगी। वहां पे धरातल पे जो भी दलों के बीच का जो गुणागणित है वो बहुत सारी चीजों को प्रभावित करेंगे और सिर्फ वोट काउंट के आधार पे सीट का काउंट नहीं किया जाता। आप एग्जिट पोल्स की जब विश्वसनीयता की बात करते हैं तो कई बार एग्जिट पोल्स में ये होता है कि वहां पे जितना प्रेडिक्शन किया जाता है उतनी सीटें नहीं आ रही होती हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि वास्तव में सीटें ही महत्वपूर्ण नहीं है, आपको वोट शेयर देखना चाहिए। तो वोट शेयर अगर आप सही तरीके से काउंट कर पा रहे हैं तो सीटें प्रेडिक्ट करने में आसानी होती है। और जब भी वोट शेयर में प्रॉब्लम होती है तो वो एलायंसे का कारण हो सकता है, वो कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो रातों रात उभर सकते हैं उनके कारण हो सकता है, वो इस कारण से भी हो सकता है कि वहां मतदान का प्रतिशत कितना रहा और मतदान अलग अलग वर्गों ने किस तरीके से किया है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनमें से किसी भी एक को अगर आप सही तरीके से आकलन उसका करने में कामयाब नहीं होते हैं तो आपको एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो दिखाई देते हैं।
तो इस बार चुनाव में माना जा रहा था कि अंडर करंट है या फिर कि वोटर साइलेंट हैं, वो सामने जाकर कुछ बात नहीं कर रहे हैं और बहुत ज्यादा एक अंदर खाने इस बार वोटिंग पैटर्न चल रहा है। एग्जिट पोल से तो ऐसा लग रहा है कि वोटर काफी वोकल रहा और उसने बताया कि आखिर किस तरफ रुझान उसका रहा है।
देखिए, एग्जिट पोल्स के थ्रू वोटर के वोकल होने और उसके पहले जो सर्वे जब हो रहे होते हैं ग्राउंड लेवल पे तब की परिस्थितियों में थोड़ा सा फर्क होता है। आप जब भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब तक पोल नहीं हुआ होता है, एग्जिट पोल एग्जैक्टली होते किस दिन है? एग्जिट पोल उस दिन होते हैं जिस दिन वहां पे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोलिंग हो रही होती है। उसके पहले के जो भी आप पोल्स करते हैं वो सब भी प्री पोल की कैटेगरी में आते हैं। तो जब आप वोट कर चुके होते हैं तब आपको अपने वोट के बारे में अपने जो विकल्प या आपने जो चुनाव किया होता है उनको बताने में मतदाताओं को उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो एग्जिट पोल इसीलिए कंपैरेटिवली ज्यादा डिसाइडिंग और ज्यादा जो एग्जैक्ट किस्म के होते हैं, जबकि उसकी तुलना में कोई भी जो पोल होता है वो कंपैरेटिवली कम जो है वो अफर्मेटिव होता है। आप ये ठीक कह रही हैं कि 2014 में जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी वो लगभग 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसके बाद हुआ था, इसलिए आप जो वोटर का जो एंगर फैक्टर था उसको आकलित करने में बहुत ज्यादा सफल हो पाए थे। लेकिन जब 5 साल में आप किसी सिनेरियो को देखते हैं तो आपको ये प्रेडिक्ट करना कंपैरेटिवली कठिन होता है कि वास्तव में मतदाता अलग अलग राज्यों में या अलग अलग राज्यों की अलग अलग लोकसभाओं में किस तरीके से मतदान करेंगे।
तो हम अपनी चर्चा आगे शुरू करें और स्टेट वाइज हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के सहयोगी रह चुके भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर को पद से हटा दिया है। राजभर गठबंधन के नियमों के विपरीत भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ लंबे समय से काम कर रहे थे। सुनिए हमारी रिपोर्ट।
राज्यपाल राम नाईक ने सुहेल देव भारत समाज पार्टी के नेता और प्रदेश में पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्री ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल से हटाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस पार्टी के 4 विधायक हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सदन में बहुमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह भी बताया जा रहा है कि सुहेल देव भारत समाज पार्टी के अन्य नेताओं को भी पब्लिक सेक्टर इकाइयों के विभिन्न पदों से हटा दिया गया है। दोनों पार्टियों के बीच लोकसभा चुनाव में सीट आवंटन को लेकर मतभेद उभरे थे। नाराज श्री राजभर ने चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहित 39 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मैं मुल्तान सिंह यादव।
तो देवेंद्र जी, बात उत्तर प्रदेश से ही शुरू करते हैं, क्योंकि इस बार पूरे चुनाव में अगर केंद्र में कुछ रहा तो उत्तर प्रदेश रहा, जहां महागठबंधन हुआ, इतने बरसों के दुश्मन दो साथ में आए, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का, जहां पे हिंसा भी हुई और बात तीखे आरोप प्रत्यारोप से शुरू हुई। यूपी में अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही माने जाते हैं तो आपको लगता है कि बुआ बबुआ फेल हो गए?
देखिए, यूपी में जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उनकी रेंज बड़ी आपको चकित करने वाली लगेगी, क्योंकि अगर आप वहां पे सीटों के हिसाब से जाके देखेंगे तो यूपी में भाजपा को 2014 में खुद 71 सीटें मिली थी और उसके एलाइज जो थे उनको 2 सीटें आई थी, वो 73 सीटें हो गई थी। पूरे देश की 1/4 सीटें जो हैं वो भाजपा को यूपी से ही आ गई थी। अब जबकि इसके बाद 2017 का चुनाव हुआ था, 2017 के चुनाव में भी भाजपा ने वहां न सबसे बड़े दल के रूप में सीटें जीती थी बल्कि 3/14 से ज्यादा सीटें वो लेके आई थी। तो यूपी में भाजपा का बहुत ज्यादा चीजें जो है वो स्टेज पे लगी हुई थी। बुआ बबुआ का जो गठबंधन है, मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर से इसने यूपी की जो लड़ाई है उसको बहुत कठिन बना दिया है, कि भाजपा को अगर किसी भी स्टेट में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अन्य स्टेटों में उसने कम मेहनत की, लेकिन इस स्टेट में उसने सीट दर सीट जो है वो अपने समीकरणों को बहुत धरातल पे जाके आंकने की कोशिश की है। हर सीट के लिए उन्होंने एक अलग तरीके की रणनीति बनाई है। पूरे 7 फेजेज में वेस्ट बंगाल और यूपी, पूरे फर्स्ट फेज से लेकर 7वें फेज तक में उनमें सीटों में लगातार जो है पोलिंग हुई थी। तो सातों फेजों के लिए जो रणनीति है वो अलग अलग तरीके की थी। एग्जिट पोल्स में यह कहा गया है कि लगभग मामला वहां नेक टू नेक है। नेक टू नेक का मामला इसलिए है क्योंकि यूपी में अगर आप 80 सीटों पे जाके देखेंगे तो यूपी में 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां पे जीत और आर का अंतर महागठबंधन और भाजपा के बीच में सिर्फ 15,000 से 20,000 रहेगा। एक लोकसभा में यूपी में 5 विधानसभाएं आती हैं, इसका मतलब है कि हर विधानसभा वार अगर 5,000 वोट भी इधर से उधर हुए तो किसी भी पार्टी के हिस्से में जीत या हार जा सकती है।
लेकिन ये जो गठबंधन रहा इसने सबसे ज्यादा ये दिखा दिया कि जातिगत समीकरण अगर सबसे ज्यादा किसी के पक्ष में गए तो वो इसी गठबंधन के पक्ष में गए। लेकिन कुछ सर्वेस तो यहां पर 66 तक सीटें दिखा रहे हैं। बीजेपी के नेता खुद दावा कर रहे थे कि हमारे पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन रहेगा, बार बार बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ये बात कर रहे थे। तो क्या जातिगत समीकरणों से निकल चुका है अब चुनाव? क्योंकि पिछले 2014 में हमने देखा कि जाति के आधार पर वोट नहीं पड़े, सबने मोदी को एक साथ वोट दिया, और इस बार भी अगर यूपी में ऐसा होता है तो क्या अब देश जातिगत समीकरणों से आगे निकल चुका है?
देखिए रीमा जी, अगर ऐसा होता है तो ये माना जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या माना जाएगा। अगर आप 2017 के चुनाव को देखें तो बीजेपी का जो वोट शेयर आया था और बीजेपी को जो सीटें मिली थी वो किसी एक जाति के आधार पर या किसी एक जाति विशेष के दलों के आधार पर ऐसा नहीं हो सकता था। तो 2017 में ये बात तय हो गई थी कि यूपी में अब बीएसपी सिर्फ किसी एक कॉम्बिनेशन के साथ या एसपी किसी एक कॉम्बिनेशन के साथ मिलके जो है वहां पे सरकार बना सकते हैं, ये संभव नहीं है। अगर 2017 का ही ट्रेंड रहा तो भाजपा के लिए यूपी में कोई दिक्कत नहीं होगी, और क्योंकि केंद्र में और राज्य में ऐसा बहुत समय बाद हुआ है, बल्कि दो दशक बाद ऐसा हुआ है जहां पे दोनों जो पार्टियां हैं वो एक ही हैं, भाजपा की ही दोनों जगह सरकारें हैं, और भाजपा ने जिन योजनाओं को लागू किया है उनके बाद ये देखना होगा कि उनके लाभान्वित जो हैं उन तक अगर योजनाएं पहुंच पाई हैं, तो ये तय बात है कि जो विकास के मॉडल के आधार पर अगर चुनाव लड़ा गया होगा तो भाजपा को इन दोनों दलों को मात देने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी।
अब बात हम थोड़ी सी पश्चिम बंगाल की करते हैं। वहां पर हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वर्सेज मोदी, दीदी वर्सेज दादा पूरा चला चुनाव में, हिंसा की बहुत ज्यादा खबरें आई, इलेक्शन कमीशन को फैसले तक लेने पड़े। उसके बाद जो एग्जिट पोल बता रहा है वो तो बहुत ही चौंकाने वाला, और बीजेपी के लिए एक अगर हम कहें सबसे अच्छी खबर तो फिर वहीं से आ रही है।
बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल जो है वो देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है सीटों के लिहाज से, और 2014 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें भाजपा को सीटों के हिसाब से बहुत ज्यादा कुछ खुश होने लायक नहीं था, लेकिन तब भी उनका वहां पे खाता खुला था, उनके पास दो सीटें आई थी। और इस बार का इलेक्शन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो भाजपा का वोट शेयर घटा था, लेकिन फिर भी वो दहाई के अंक में रहा था। पश्चिम बंगाल में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए थे उसमें भाजपा का प्रदर्शन अन्य दलों की तुलना में टीएमसी के बाद सबसे बेहतर रहा था। भाजपा की उम्मीद का सारा आधार यही है, और ऐसा देखा गया है कि अगर भाजपा देखिए जैसे वेस्ट बंगाल में वोटर के पोलराइजेशन होने की बात कही जा रही है, लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि अगर भाजपा को वहां पे विकास के आधार पे या सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पे वोट मिलेगा तो निश्चित रूप से वहां पे टीएमसी को बहुत बड़ी चुनौती पैदा होने जा रही है। ममता बनर्जी ने भी इस चीज को खुद भी स्वीकार किया है कि इस इलेक्शन में उनका प्रमुख मुकाबला जो है वो कांग्रेस या लेफ्ट पार्टी से नहीं है, बल्कि वहां भाजपा सीधे सीधे मुकाबले में है।
ये इसी बात को मैं कहूंगी कि लेफ्ट को तो एक भी सीट वहां मिलती हुई दिख नहीं रही है एग्जिट पोल में, तो क्या आपको लगता है कि जो लेफ्ट का वोटर था वो बीजेपी की तरफ आया है?
बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं रीमा, ये संभव हो सकता है कि लेफ्ट और ये जो राइट का कैडर है वो बड़ा डिवाइडेड सा दिखता है, लेकिन जब आपके पास च्वाइसेस की बात होगी तो पिछले एक दशक में वेस्ट बंगाल में ममता की पार्टी टीएमसी ने जिस तरीके से लेफ्ट के कैडर को हर लेवल पे खत्म किया है, उसके बाद से उस कैडर को ये सोचना होगा कि वास्तव में वो अपनी लड़ाई किस तरीके से लड़ेंगे। तो उनके पास एक तो विकल्प ये था कि ये उसी कैडर के साथ बने रहते और उनकी पार्टी में कुछ नया इनोवेशन होता और वो कर पाते कुछ नया, ऐसा हुआ नहीं। तो इस स्थिति में ये दिखता है कि जो टीएमसी को सीधे वोट नहीं कर सकते वो बहुत बड़ी संख्या में भाजपा की ओर आ जाएं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच ये है कि वेस्ट बंगाल में मुस्लिम आबादी जो है वो अलग अलग लोकसभाओं में बहुत सिग्निफिकेंट है, उस आबादी का भाजपा की ओर मुड़ना कंपैरेटिवली कठिन दिखाई देता है। तो इस आधार पे हो सकता है कि भाजपा को वोट शेयर के हिसाब से बहुत फायदा हो, लेकिन सीटें जैसी वो सोच रही है कि 20 या 22 सीटें, ये हो सकता है ना है। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि भाजपा वहां पे सिंगल डिजिट से डबल डिजिट पार्टी
प्रदर्शन अच्छा रहेगा। थोड़ा सा साउथ की तरफ चलते हैं। चंद्रबाबू नायडू इस पूरे चुनाव में बहुत एक्टिव रहे, जब वो एनडीए की तरफ थे तब भी बहुत एक्टिव रहते थे, और इस बार भी ऑपोजिशन के साथ में सबसे आगे वही दिखाई दिए, दिल्ली आकर सबसे बैठ के कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल में तो चंद्रबाबू नायडू के लिए कोई अच्छी खबर आ नहीं रही है, तो उनके रोल को आप किस तरह देख रहे हैं?
देखिए चंद्रबाबू नायडू के लिए दिक्कतें दोहरी हो गई हैं। दोहरी इसलिए हो गई हैं कि 2014 के जो लोकसभा चुनाव थे उसी के साथ आंध्र प्रदेश में, वो अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना साथ में था, वहां पे चुनाव हुए थे और चंद्रबाबू नायडू जो है वो आंध्र प्रदेश वाले हिस्से के सीएम बने थे। इलेक्शन सब हुए उसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग पे आगे बढ़ते हुए फिर एनडीए से अपने को अलग कर लिया। फिर 2014 में तेलंगाना में 2014 के बाद से अभी जो तेलंगाना के जो इलेक्शन हुए हैं वो उन्होंने समय से पहले करा लिए। चंद्रबाबू नायडू ने उस समय प्रयास किया, वो कांग्रेस के साथ गए और उन्होंने एक अलायंस बना के वहां पे कुछ नया करने की कोशिश की। तो आंध्र में जो अभी असेंबली इलेक्शन हुए हैं उनमें जो टीडीपी का जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं एक बार जो है दिक्कत में दिख रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू को दो तरीके से सोचना पड़ेगा कि एक तो स्टेट में जो उनकी भूमिका में बदलाव हुआ है वो उन्हें अपने आप को मजबूर करता है कि वो दूसरे दलों की या राष्ट्रीय राजनीति के अन्य दलों से आके मिलने के लिए मजबूर हो, और वो इलेक्शन खत्म होने या इलेक्शन के पूरे प्रोसेस के दौरान ही अपने प्रदेश को कम लेकर चिंतित दिखाई दिए, वो पूरी राष्ट्रीय राजनीति के इर्द गिर्द इधर उधर दौड़ते हुए ज्यादा दिखाई दिए। तो चंद्रबाबू नायडू की दिक्कतें जो हैं वो आंध्र प्रदेश में सीटों और वोटों दोनों के लिहाज से बढ़ने जा रही है।
अच्छा, ये जो पूरा हम नतीजे देख रहे हैं एग्जिट पोल के, इससे कहीं ना कहीं ये भी तस्वीर साफ होती है कि जो विपक्ष में एकजुटता नहीं थी वो एक खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ा है। अब भले ही पोस्ट पोल अलायंस की बात हो रही है, स्ट्रेटेजी बनाने की बात हो रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ा मुद्दा रहा जिसने फायदा एनडीए को दिया है?
मैं बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं कि जब अलग अलग दलों ने अलग अलग मंचों पे खुद को लाने की कोशिश की और वो आए भी, लेकिन जब इलेक्शन लड़ने की बात आई तो एक एनडीए या एक यूपीए ऐसा बन नहीं सका। एनडीए में अन्य दलों को जोड़ा गया, छोटे छोटे दलों को जोड़ा गया, लेकिन यूपीए जो है कहीं ना कहीं बिखरता हुआ सा नजर आया। वाम दलों और कांग्रेस दोनों ने ही 5 साल बीजेपी की खूब, जिसे कहते हैं कि विरोध किया, लेकिन जब साथ आके चुनाव लड़ने की बात आई तो वो केरल में साथ नहीं हुए, वो वेस्ट बंगाल में साथ नहीं हो पाए, ऐसे ही आसाम में जो है वो वहां पर अलायंस नहीं हो पाया। तो अलग अलग स्टेट जहां पर अलायंसेस की जरूरत थी या भाजपा को चुनौती देने के लिए जहां पे एक मजबूत विपक्ष की जरूरत थी वैसा हो नहीं पाया। तो जो ऐसे स्टेट हैं, कई सारे ऐसे स्टेट्स आपको दिखाई देंगे जैसे कि आपका तेलंगाना शामिल है, जहां पे कि यूपीए जो है वो बीजेपी के खिलाफ उस तरीके से लड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो इन स्टेट्स में जो अन्य दलों को सीटें आ रही हैं वो यूपीए को बहुत फायदा देने के लिए दिखाई नहीं देती।
अच्छा, इस वक्त बीजेडी और वाईएसआर ये दो दल ऐसे हैं और टीआरएस, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वो उनका झुकाव कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ एनडीए की तरफ ही रहेगा। एआईएडीएमके और डीएमके को आप कहां पे देख रहे हैं? क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि अब जब सोनिया गांधी बैठक बुलाएंगी तो उसमें इन दलों को भी इन्वाइट किया जाएगा।
देखिए, एआईडीएमके का कांग्रेस के साथ जाना या यूपीए के साथ जाना वो लगभग असंभव सा दिखाई देता है। वहां पे अभी जो है वो असेंबलीज के भी बाई इलेक्शन होने हैं और उनमें जो सीटें हैं उनके आधार पर यह तय होगा कि वहां पर सरकार वास्तव में बची रहेगी एआईडीएमके की या नहीं। महत्वपूर्ण यह होगा कि तमिलनाडु में किस तरीके का प्रदर्शन जो है वो एआईडीएमके या डीएमके कर पाते हैं। डीएमके वहां घोषित तौर पर कांग्रेस के साथ है, एआईडीएमके वहां पर एनडीए का पार्ट है जो कि 2014 में नहीं था। तो अभी तो जब अगर सीटें एनडीए की नहीं आ पाती हैं बहुमत में तब इन दलों की प्रासंगिकता बहुत होगी। और जहां तक बीजेडी की बात है तो बीजेडी और बीजेपी जो हैं वो उड़ीसा में एक दूसरे के जस्ट सामने लड़ी हैं, लेकिन इसकी सीटों पे वही निर्णायक होने जा रही हैं। और अभी जो 2014 से 2019 तक देखा गया है कि बीजेडी का जो झुकाव है वो बीजेपी के साथ ठीक ठाक रहा है, तो अगर जाने की बात आएगी तो बीजेडी, मुझे लगता है कि वो बीजेपी के साथ आने में ज्यादा सुविधाजनक।
तो अब चलते चलते एक और सवाल मैं पूछूंगी, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट इस चीज में भी आ रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां पर की सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई, उसके बावजूद वहां पर एग्जिट पोल तो ये दिखा रहा है कि मोदी की वेव चली है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के अलग अलग नतीजे आप अगर वोट शेयर के हिसाब से देखें तो वहां पर मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में ही अभी जो 2018 में जो नवंबर में चुनाव हुए थे उसमें वोट शेयर बीजेपी का जो कम हुआ था वो भी वापस लौटा है, तो इसलिए वहां के नतीजे में वो फिर से बीजेपी के साथ जा रहे हैं।
बिल्कुल, तो डिस्कशन हम खत्म करें उससे पहले बता दें कि आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग चुनाव बाद के राजनीतिक घटनाक्रम विषय पर हिंदी और अंग्रेजी में एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल पर आज रात 9:30 बजे से सुना जा सकता है। तो देवेंद्र शुक्ल जी हमारे स्टूडियो में आने और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें airnsgtalks@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।
चुनाव परिणामों की लगातार 24 घंटे ताजा और विश्वसनीय खबरें 23 और 24 मई को समाचार सेवा प्रभाग के विशेष जनादेश 2019 कार्यक्रम पर।
देश के कोने कोने से आकाशवाणी संवाददाता बताएंगे लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों का ताजा हाल।
स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ करेंगे चुनाव नतीजों का विस्तृत और गहन विश्लेषण। आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे FM गोल्ड चैनल और अन्य चैनलों पर सुन सकते हैं। ये प्रसारण यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा।
नवीनतम परिणामों के लिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.com देखें और फॉलो करें हमारा ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi।
जनादेश 2019।